अभी शब्द नाम के गुण की ही चर्चा चल रही है तर्क भाषा में, जिसमें कि आपको पहले शब्द के शब्द जो है गुण है और उसका लक्षण बताया गया, या आकाश का विशेष गुण है, और फिर कैसे जो है अन्यत्र उत्पन्न होने वाले शब्द का अन्यत्र रहने वाले श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण होता है, ये बात भी बताई गई। उसमें दो न्याय की चर्चा हुई, बीची तरंग न्याय और कदम मुकुलन न्याय। दोनों न्यायों में समानता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि बीची तरंग न्याय में सभी दिशाओं में जो है ना एक जैसा शब्द उत्पन्न होता है, और कदम मुकुलन न्याय से जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति होती है। भिन्न मतलब समझते हैं ना, अलग अलग, क्योंकि तरंग जो है वह बीच में कहीं कटा नहीं होता है, तरंग एक दूसरे से जुड़ा ही रहता है। और ये जो कदम मुकुल जो है, मुकुल माने कुडमल, तो वह जो है ना वो भिन्न भिन्न रहता है। आप देखेंगे कदम का जो फल देखेंगे ना, उसमें डॉट डॉट रहता है, वह डॉट एक दूसरे डॉट से सटा नहीं रहता, अलग अलग रहता है। तो वो जो अलग अलग डॉट 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 रहता है ना, उसी को कहते हैं भिन्न भिन्न। तो बीची तरंग न्याय में जो शब्दांतर उत्पन्न होगा वह परस्पर जो है ना एक दूसरे शब्द से जुड़े रहते हैं, और कदम मुकुलन न्याय से जो शब्दांतर उत्पन्न होगा वो पूर्व शब्द की तरह ही होगा उत्पन्न, लेकिन वह आपस में जो है ना थोड़ा सा अलग 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 वो सारे शब्द होंगे। जैसे आज का कोरोना का जो फोटो दिखाता है ना टेलीविजन समय, चित्र दिखाता है, गेंद टाइप रहता है और उसमें जो है ना अलग 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 कांटे जैसे रहते हैं, तो वो कांटे सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन भिन्न भिन्न है ना, माने एक से दूसरे अलग अलग होते हैं। तो यही चीज है कदम मुकुलन न्याय की। कदम मुकुलन न्याय से जब शब्द की उत्पत्ति मानते हैं तो पूर्व शब्द की तरह ही शब्दांतर उत्पन्न होता है, लेकिन वह जो शब्दांतर उत्पन्न होता है वह एक दूसरे से थोड़ा सा अलग 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 होता है, एक दूसरे से मिला हुआ नहीं रहता है। लेकिन बीची तरंग न्याय से शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह सब एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं चारों दिशाओं में, ठीक है। तो ये जो चारों दिशाओं में जो फैलना है ये दोनों न्याय से होता है, एक बीची तरंग न्याय में एक दूसरे से मिले रहते हैं फैलाव के समय, और दूसरा कदम मुकुलन न्याय में फैलाव तो होता है सभी दिशाओं में, लेकिन एक दूसरे से शब्द अलग अलग रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो पिछला पाठ हुआ था उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। भेरी शब्द उत्पत्तौ भेर्याकाश संयोग असमवायि कारणम, कारण जो भेरी वाद्य से जो शब्द की उत्पत्ति होती है उसमें समवायि कारण तो वो आकाश होगा, माने जिस देश में भेरी शब्द है, भेरी वाद्य है, उस देश में रहने वाला जो आकाश है वह आकाश हो गया समवायि कारण। और भेरी और आकाश इन दोनों का जो संयोग गुण है वह संयोग हो गया असमवायि कारण। और भेरी दंड संयोगो निमित्त कारणम, और भेरी को जो दंडे से जो न ठोकते हैं उसका जो दंड के साथ संयोग होता है, वह उसका निमित्त कारण है। तो शब्द की उत्पत्ति में, भेरी शब्द की उत्पत्ति में भेर यवच्छिन्न जो आकाश है वह हो गया समवायि कारण। भेर यवच्छिन्न आकाश मतलब भेरी के देश में रहने वाला जो आकाश उसको कहेंगे भेरी अवच्छिन्न आकाश। तो भेरी शब्द की उत्पत्ति में भेर यवच्छिन्न आकाश हो गया समवायि कारण, भेरी और आकाश में रहने वाला जो संयोग है वह हो गया असमवायि कारण, और भेरी के साथ दंड का जो आघात है, भेरी और दंड का जो संयोग है वह उसमें हो गया निमित्त कारण। इस तरह से समवायि कारण, असमवायि कारण और निमित्त कारण से भेरी शब्द की उत्पत्ति होती है। ये तो हुआ संयोग होने से उत्पत्ति, क्योंकि भेरी के साथ दंड का संयोग हुआ तो भेरी ध्वनि की उत्पत्ति हुई। तो जैसे संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती है उसी तरह से जो है विभाग से भी जो है शब्द की उत्पत्ति होती है, और विभाग से जो शब्द उत्पत्ति होती है उसका उदाहरण आप ले सकते हैं। बांस को चीरते हुए आपने देखा होगा, बांस को थोड़ा कुल्हाड़ी से पहले शुरू में चीर देते हैं और फिर उसमें आधे में पांव फंसा करके और आधे को हाथ से पकड़ करके उसको जो चीरते हैं तो फट फट चट 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 वहाँ जहाँ जहाँ गांठ है ना वो गांठ जो टूट फटती चली जाती है तो उससे जो है ना चटचटा शब्द की उत्पत्ति होती है। वह जो चटचटा शब्द की उत्पत्ति होती है वह बांस के संयोग होने से नहीं होती है, वो विभाग होने से। वो जो गांठ रहती है ना वो गांठ जो एक हिस्सा दूसरे हिस्से से विभक्त होता है, अलग होता है, उससे शब्द की उत्पत्ति होती है। तो शब्द की उत्पत्ति संयोग से भी होती है और संयोग शब्द की उत्पत्ति विभाग से भी होती है। तो संयोग से कैसे उत्पत्ति होती है, उसमें कौन कारण है, समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण, वो तो आपको पहले बताया गया। अब विभागज जो शब्द है उसकी उत्पत्ति का कारण सब बताएंगे। तो वही कहते हैं कि एवं वंशोत्पाटनात्, वंश उत्पाटनात्, वंश का जो उत्पान उत्पाटन होता है माने बांस को जो फाड़ा जाता है उस फाड़ने से चटचटा शब्द उत्पत्ति, चटचटा शब्द की उत्पत्ति होती है। और वह जो उत्पत्ति है उसमें कौन है कारण, तो समवाय कारण जो होगा वह होगा वंश का जो दल है माने जो 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 दो टुकड़े हैं खंड है वो वंश दल द्वय खंडावच्छिन्न जो आकाश है माने बांस का जो दो पार्ट है उस पार्ट में रहने वाला जो आकाश है वह हो गया उसका समवाय कारण। चटचटा शब्द की उत्पत्ति का समवाय कारण हो गया वंश दल द्वयावच्छिन्न आकाश। और ये जो असमवाय कारण क्या हुआ, तो वंश दल आकाश विभाग असमवाय कारणम, वंश दल, दल माने खंड, तो वंश का जो खंड है बांस का जो आर्ट है उसका और आकाश के साथ जो विभाग हुआ है वह हो गया वहाँ पर असमवाय कारण। और दलद्वय विभागो निमित्त कारणम, और दोनों खंडों का जो विभाग होता है वो उस चटचटा शब्द की उत्पत्ति में निमित्त कारण है। इत्थम आद्य शब्द संयोग जो विभाग जो वा, इस तरह से जो आद्य शब्द है, आपने देखा ना कि शब्द अनेक प्रकार के उत्पन्न होते हैं, उसमें पहला जो शब्द उत्पन्न होता है आद्य शब्द जो उत्पन्न होता है वह आद्य शब्द संयोगज भी होता है और विभागज भी होता है। जैसे भेरी शब्द उत्पत्ति जो है वह संयोगज है और वंशोत्पाटन से जो चटचटा शब्द की उत्पत्ति है वह विभागज शब्द है। इसमें जो आद्य शब्द है वह संयोगज विभागज है और जो मध्य और अंत्य शब्द है वह तो शब्दज शब्द है, माने एक शब्द जो है दूसरे शब्दांतर को उत्पन्न करता है विचि तरंग न्याय से अथवा कदंब मुकुलक न्याय से। आगे कहते हैं कि अंत्य मध्यम शब्दास्तु, अंत्य और मध्यम शब्द जो है वो शब्द असमवाय कारण का, उसका जो है असमवाय कारण कौन होता है, तो शब्द ही असमवाय कारण होता है। आद्य शब्द जो है उसका तो असमवाय कारण कौन हो गया, वंश दल आकाश विभाग, ठीक है, ये असमवाय कारण हुआ, और दलद्वय विभाग हो गया निमित्त कारण। लेकिन मध्य और अंत्य शब्द जो है उसमें असमवाय कारण हुआ शब्द, क्योंकि एक शब्द ही शब्दांतर को उत्पन्न करता है, तो शब्द हो गया असमवाय कारण। और अनुकूल बात निमित्त कारण का है, और निमित्त कारण क्या होता है मध्यम और अंत्यम अंत्य शब्द में, ये किस शब्द की बात हो रही है, विभागज शब्द की बात हो रही है ना, इसमें जो निमित्त कारण होता है वो अनुकूल बात निमित्त कारण होता है, माने हवा की अनुकूलता जो है वो इसमें निमित्त कारण की भूमिका अदा करती है। यथोक्तम, जैसे कि वैशेषिक सूत्र में, वैशेषिक दर्शन के सूत्र में कहा गया है कि संयोगात विभागात शब्दात च शब्द निष्पत्ति, माने संयोग से भी शब्द की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति माने उत्पत्ति होती है, विभाग से भी शब्द की उत्पत्ति होती है, और शब्दात शब्द निष्पत्ति माने शब्द से भी शब्द की निष्पत्ति होती है। तो इसमें आद्य जो शब्द है वह तो संयोग गज और विभागज होता है, और मध्य और अंत्य शब्द जो होता है वह शब्द से निष्पन्न होता है, वह संयोग और विभाग से निष्पन्न नहीं होता है। आद्यादीनाम सर्वशब्दानाम आकाशम एकम एव समवायि कारणम, ताकि आद्य हो, मध्य हो, अंत्य हो, सभी शब्दों का एक आकाश जो है वह समवायि कारण होता है, केवल आद्य मध्य अंत्य में केवल जो है ना असमवायि कारण और निमित्त कारण में ही केवल भेद होता है, बाकी सब बाकी समवाय कारण सबका एक ही होता है। तो इस तरह से इन्होंने तीन प्रकार के जो शब्द हैं आद्य मध्य अंत, इसमें कौन समवाय कारण है, कौन असमवाय कारण है, कौन निमित्त कारण है, इसको यहाँ पर बताया गया। अब विचार ये किया जा रहा है कि ये जो शब्द है ये शब्द कितनी देर तक जो है जिंदा रहता है, इसका विनाश जो है कब होता है। तो आगे कहते हैं तर्क भाषा का कि कर्म बुद्धिवत त्रिक्षणावस्थायित्वम, माने शब्द में जो है ना त्रिक्षण अवस्थायित्व तो रहता है, माने तीन क्षण तक ये अवस्थित रहता है शब्द और तीसरे क्षण के बाद ये नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको ना क्षण प्रतिध्वंसी कहते हैं। शब्द को ये तीन को जो है ना शब्द क्षण प्रतिध्वंसी कहा जाता है, शब्द को, कर्म को और बुद्धि को। कर्म मतलब क्रिया, मैंने बताया था आपको कि शब्द क्रिया और बुद्धि ये तीनों जो है ना ये त्रिक्षणावस्थाई हैं, माने तीन क्षणों तक अवस्थित रहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रथम क्षण में जो है ना शब्द कर्म और बुद्धि की उत्पत्ति होती है, द्वितीय क्षण में शब्द कर्म और बुद्धि की स्थिति होती है और तृतीय क्षण में शब्द कर्म और बुद्धि का नाश होता है। तो प्रथम क्षण में उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में स्थिति, तृतीय क्षण में विनाश, इस तरह से शब्द के टोटल कितने क्षण हो गए, तीन क्षण हो गए, इसलिए शब्द को जो है ना त्रिक्षणावस्थाई कहा, माने तीन क्षणों में इसकी अवस्था रहती है। उत्पत्ति अवस्था का एक क्षण होता है, स्थिति अवस्था का एक क्षण होता है और विनाश अवस्था का एक क्षण होता है। तो इस तरह से त्रिक्षण अवस्थाई है, तीन क्षणों में रहने वाली अवस्था होती है शब्द की और इसी तरह से कर्म की और बुद्धि की। तो कर्म बुद्धिवत माने कर्म की तरह और बुद्धि की तरह शब्द में भी जो है त्रिक्षणावस्थायित्व होता है। अब देखिए कि ये त्रिक्षणावस्थाई है लेकिन फिर भी इसको क्षणिक शब्द से ही कहा जाता है कि शब्द क्षणिक होता है, कर्म क्षणिक होता है, बुद्धि क्षणिक होती है। तो तीन क्षणों में रहने वाले होने पर भी इसको क्षणिक कहा जाता है। इसमें शायद ये बात होगी क्योंकि प्रथम क्षण में तो उत्पत्ति हुई और तृतीय क्षण में उसका नाश ही हो गया, तो स्थिति का काल जो है एक ही क्षण होता है, इसलिए शायद इसको क्षणिक कहते हैं। अथवा तीन क्षणों को भी क्षण मान करके ही जो है शब्द को क्षणिक कहा जाता है, ये दोनों तरह की बात हो सकती है। तो कर्म बुद्धिवत त्रिक्षणावस्थायित्वम शब्द जो है त्रिक्षणावस्थायी है अर्थात क्षणिक है कर्म और बुद्धि की तरह। आगे फिर कहते हैं तत्र आद्य मध्यम शब्दाः कार्य शब्द नास्याः। अब ये तो हो गया कि ये त्रिक्षणावस्थाई है, शब्द की अवस्था जो है उत्पत्ति अवस्था, स्थिति अवस्था और विनाश अवस्था, इस तरह से त्रिक्षण अवस्था इसमें होती है शब्द में। अब इसका नाश जो कहा कि तृतीय क्षण में नाश होता है, वो किस कैसे नाश होता है, तो कहते हैं कि तत्र आद्य मध्यम शब्दाः कार्य शब्द नाश्याः। आप ये ध्यान में रखिएगा उत्पत्ति कैसे हुई थी, आद्य शब्द की उत्पत्ति हुई, आद्य शब्द ने जो है ना मध्यम शब्द को उत्पन्न किया, मध्यम शब्द ने जो है अंतिम शब्द को उत्पन्न किया, ये क्रम था ना। तो इसमें आद्य और मध्यम शब्द जो है वह कार्य शब्द से नाश्य होते हैं, कार्य शब्द से नाश होते हैं अर्थात जिसको उसने उत्पन्न किया, जिस शब्द को, उसी उत्पन्न शब्द से जो है ना उत्पादक शब्द का नाश होता है। माने आद्य शब्द का नाश, आद्य ने किसको उत्पन्न किया, मध्यम को, तो आद्य का नाश होगा मध्यम शब्द से, और मध्यम शब्द का किससे नाश होगा, तो मध्यम शब्द ने जिस शब्द को उत्पन्न किया है उसको कहते हैं कार्य शब्द। तो उत्पन्न शब्द मतलब हुआ कार्य शब्द, ठीक, और उत्पादक शब्द जो है उसको यहाँ आद्य और मध्यम शब्द से कहा गया। तो उत्पादक शब्द का उत्पाद्य शब्द से, कार्य शब्द से जो है ना नाश होता है, ठीक। अंत्यस्तु उपांत्येन, और अंत्य शब्द जो है उसका नाश कैसे होगा, क्योंकि अंत के बाद तो कोई कार्य शब्द है नहीं, अंत्य शब्द के बाद तो कोई दूसरा शब्द है नहीं, तो उसका नाश कैसे होगा, तो कहते हैं अंत्यस्तु उपांत्येन, माने अंत्य का नाश जो है वह उपांत्य शब्द से होता है। उपांत्य मतलब सेकेंड लास्ट, लास्ट के अंत्य के जो पूर्व होता है उसको उपांत्य कहा जाता है। तो आद्य शब्द और मध्यम शब्द का नाश होता है कार्य शब्द से, माने अपने द्वारा उत्पन्न शब्द से, और अंत शब्द का जो नाश होता है वह उपांत शब्द से माने अपने से पूर्ववर्ती शब्द से नाश होता है। अब सवाल आया कि उपांत शब्द का किससे नाश होगा, वो जो सेकंड लास्ट शब्द है का कि उसका अंत्य शब्द से नाश हो जाएगा। इस तरह से यहाँ क्या हुआ कि अंत्य का उपांत से नाश हुआ और उपांत शब्द का अंत्य शब्द से नाश हुआ। इसमें बड़ा सुंदर उदाहरण दिया इन्होंने, सुंदोप सुंद न्यायेन विनाश्यते। सुंदोप सुंद न्याय से जो है ना अंत्य उपांत का नाश होता है। ये सुंद उपसुंद न्याय क्या है, तो ये दोनों राक्षस के नाम है, सुंद नाम का राक्षस और उपसुंद नाम का राक्षस। ये दोनों राक्षस आपस में भिड़ गए, अब भिड़ गए तो सुंद ने उपसुंद को मार दिया और उपसुंद ने सुंद को मार दिया। इसी तरह से अंत्य शब्द जो है सुंदोपसुंद न्याय से उपांत्य शब्द को मारता है और उपांत्य शब्द जो है अंत्य शब्द को मारता है। इदंतु अयुक्तम। अब ये जो यहाँ पर बात बताई गई सुंदोप सुंद न्याय से अंत्य और उपांत्य शब्द का नाश होता है, इस यह तर्क भाषाकार केशव मिश्र जो है इसको अयुक्त मानते हैं, का इसको समीचीन नहीं मानते हैं। कहते हैं इदम तु अयुक्तम, ये अयुक्त है। क्यों? तो उपांत्य न त्रिक्षणावस्थाइना अन्यस्य, माने उपांत्य शब्द जो है वह उपांत्य शब्द त्रिक्षण अवस्थाई जो अंत्य शब्द है उस अंत्य शब्द के द्वितीय क्षण मात्र अनुगामी होगा। माने अंतिम क्षण का अंतिम शब्द का जो अंतिम शब्द जो है तीन क्षण अवस्थाई होगा ना, तो उस त्रिक्षण अवस्थाई अंत्य शब्द का द्वितीय क्षण तक जो है अनुगमन करेगा कौन, उपांत्य शब्द। और तृतीय क्षण में तो असता, तृतीय क्षण में तो वह रहेगा ही नहीं, जब रहेगा ही नहीं तो फिर अंत्य का जो है वह नाश कैसे करेगा, अंत्य नाश जनन असंभवात, अंत्य शब्द का वह नाश नहीं कर पाएगा। तस्मात उपांत्य नाशात एवं अंत्य नाश, इसीलिए ये मत मानिए कि उपांत्य शब्द से अंत्य शब्द का नाश होता है, ये मानिए कि उपांत्य शब्द के नाश से अंत्य शब्द का नाश होता है, ये अंतर है। पहले जो मत प्रस्तुत किया गया था उसमें था कि उपांत्य शब्द से अंत्य शब्द का नाश होता है, तर्क भाषाकार के मंत में उपांत्य शब्द के नाश से अंत्य शब्द का नाश होता है ये कहा गया है, यही दोनों में भेद है। तो आज का पाठ यहीं पर रखते हैं, अभी शब्द के बारे में और भी विचार किए जाने हैं जिसको कि हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।